ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की एक अनूठी हारमाला।
आज हम कैप्टन वीरेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी के अनुभवों और गान सरिता के तहत एक गीत के साथ साथ दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग भी सुनेंगे।
और मुंबई स्थित अपने आवास धर्म क्षेत्र की स्थापना दिवस की एक वर्षगांठ के अवसर पर भगवान बाबा द्वारा दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग
तथा एक भजन प्रशिक्षण भी हम आज प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेम अवतार श्री सत्य साई।
आज इसके अंतर्गत हम श्री भगवान के जीवन काल के उस समय से जुड़े कुछ प्रसंग सुनेंगे जब अवतार घोषणा करने के बाद अनेकों प्रकार के लोगों ने तरह तरह से बाबा की परीक्षा ली थी।
हमारे स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हमसे अधिक बुद्धिमान कैसे हो सकता है, शिक्षकगण चर्चा करते। अपने आपस के विवाद से कोई लाभ ना समझ उनमें से एक शिक्षक ने परामर्श दिया, हम सब मिलकर उधर जा उसकी परीक्षा करें, तभी पता चलेगा कि सत्य क्या है। निर्णय के अनुसार सब शिक्षक शेषम राजू के घर पहुंचे। प्रश्नों की वर्षा आरंभ हुई। सत्यनारायण ने जो प्रश्न है सब एक साथ पूछ लो, अनंतर मैं उन सब का उत्तर दूंगा, कह उन सब को बैठाया। प्रश्नों की झड़ी समाप्त होने पर समाप्त हुए आपके प्रश्न, कहते हुए प्रत्येक की ओर संकेत कर यह रहा आपका प्रश्न और यह है उसका उत्तर। यूं कहते हुए उसने सबके प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर दिया। अपने प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर पाकर सब अपनी अनुचित धारणा पर पश्चाताप करने लगे। बालक के अद्भुत अलौकिक ज्ञान को देख आश्चर्यचकित हो सब घर लौटे। उर्वा कोंडा से लौटे हुए भक्तों ने बाबा के अवतार की प्रसारणा की। उनके मुख से विवरण सुन अनेक लोग दर्शन पाकर कृतार्थ हुए, किंतु बल्लारी जिले के स्कूल इंस्पेक्टर, हेल्थ ऑफिसर, इंजीनियर, म्युनिसिपल मेंबर तथा बड़े बड़े दुकानदार आदि प्रतिष्ठित लोग इतनी महिमा सुनकर भी संतुष्ट न थे। उन्होंने शेषम राजू से आग्रह किया कि उनके गांव में भी एक गुरुवार को पूजा भजन का समारंभ किया जाए। बड़े भाई शेषम राजू ने सोचा कि चलो सत्या के आरोग्य की दृष्टि से इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेना चाहिए। पूजा भजन तो होगा ही, बालक को पकड़ नचाता हुआ यह पागलपन नया सन्निवेश, नया वातावरण तथा नए प्रदेश के अवलोकन से संभवतः कुछ कम हो जाए। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के खंडहरों में कुछ ही मील की दूरी पर आधुनिक हासपेट नगर बसा है। उस पुरातन राजधानी में कर्नाटक प्रदेश के गत वैभव, सनातन धर्म संरक्षण केंद्र के अवशेष चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे ऐतिहासिक उत्साहवर्धक स्थान का परिभ्रमण करने पर संभवतः सत्य साई पूर्व शरीर आदि की बातें भूल पुनः अपनी पाठ्य पुस्तकों की ओर आकर्षित होकर आगामी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा, यही सोच उसे हम्पी ले जाना निश्चित किया गया। नवरात्रि की छुट्टियों में तांगे पर सवार हो हम सब हम्पी पहुंचे। सन 1330 से सन 1560 तक के 230 वर्ष का काल शांति पर्व समझा जाता है। इस काल में धर्म की जगमगाती ज्योति बन, पराक्रम का रणस्थल बन, संगीत, साहित्य, नृत्य एवं नाट्य के संगम के समान, देवी अन्नपूर्णा के भंडार सदृश, कुबेर के खजाने के समान तथा कुमार स्वामी के शिविर के समान शोभायमान हम्पी शहर सुविख्यात था। नूनिस, पेयस जैसे प्रख्यात प्रवासियों द्वारा वर्णित रत्नों की दुकानों की पंक्ति, फूलों की दुकानों, जरी की साड़ी, पीतांबर आदि की दुकानों से एक काल में शोभित उस विशाल राजमार्ग से वे गुजरे थे। प्राचीन अश्वशाला, गजशाला, रनिवास, अंतःपुर आदि के खंडहर देखे। मूंगफली का गणपति कहलाने वाला भारी गणपति विग्रह देख सब आश्चर्यचकित हुए। विट्ठल स्वामी के देवालय में जाकर दर्शन किए। मातंग पर्वत के समीप पर्णकुटी में एक उत्तर भारतीय महर्षि तपस्या कर रहे थे। सत्या को देखते ही वे उसके समीप आए और बड़े प्यार से सत्या को स्पर्श करते हुए बोले, देखिए यह बालक अन्य बालकों के समान नहीं है, इसको प्रेम और भक्ति से पालना होगा, यह एक दैवी तेजपुंज है। शेषम राजू ने महर्षि की वाणी सुनी। आसुरों द्वारा पाताल में गिराई पृथ्वी को उठाने वाले वाराह के चित्र से अंकित ध्वजा को मानने वाले विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण चक्रवर्तियों के इष्ट देव, उनकी आंखों की ज्योति, मन की शांति, भुजवल हृदयावेश, बुद्धि के उद्गम स्थान विरूपाक्ष देव के दर्शन कर कृतार्थ हुए। देव पूजा अर्चना करवाई गई। पुजारी ने नारियल फोड़ा, नैवेद्य चढ़ाया, कर्पूर जलाकर आरती उतारी। अरे अरे देखो, सत्या कैसे मंदिर के गर्भ द्वार में पहुंचा, शिवलिंग के समीप ही यह लड़का कैसे खड़ा है, क्या इसी की आरती उतारी जा रही है, अर्चक भी पागल हो गया है क्या, इस प्रकार कुछ लोग चिल्ला उठे। पर वह तो हमारे साथ मंदिर में आया ही नहीं था, बाहर ही खड़ा था, बाहर जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर शेषम राजू उसी क्षण मंदिर से बाहर निकले। सत्या मंदिर के गोपुर के श्रृंग की शिल्पकला का अवलोकन करता हुआ वहीं खड़ा था। गर्भद्वार में आरती को स्वीकार करने वाले विरूपाक्ष देवता बाहर प्रांगण में मनुष्य रूप में खड़े थे। सबके मन में एक ही विचार आया, निसंदेह सत्या ही साक्षात विरूपाक्ष देवता का मानव रूप है। बड़वानल के समान यह बात हसपेट में फैल गई। घटना का विवरण सुन लोगों के आनंद की सीमा न रही, उनका संशय मिट गया। बाबा के स्वागत समारंभ में वह सब आनंद और उत्साह से जुट गए। बाबा की उपस्थिति में ही उस गुरुवार का भजन कीर्तन संपन्न हुआ। भजन के मध्य ही उस सभा में उपस्थित एक क्षय रोगी को बुला उसका विभूति प्रदान कर बाबा ने उसके रोग का तुरंत ही नाश किया। उन्होंने रोगी से कहा, चलो भजन समाप्ति के पूर्व ही कम से कम एक मील तो पैदल ही चलकर वापस लौट आओ। उनके आज्ञानुसार ये अनायास ही उतनी दूर चलकर वापस लौट आया। छोटे भाई का सहज चमत्कार देखकर शेषम राजू चकित रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सच है, कौन समझ सकता है इस भगत तत्व को। सत्यनारायण का दैनिक जीवन आचरण सब बदल गया। वह अनोखे ढंग से खड़ा रहता, मानो किसी की पुकार सुन रहा हो। अपने हाथों से संकेत कर बोध देता, सब माया है, सब अस्थिर है। बड़ा भाई, उसकी सहधर्मिणी या अन्य कोई लौकिक विषयों की चर्चा करते तथा उसकी हंसी, छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देते हो, इस प्रकार आलोचना करती हुई सी प्रतीत होती। सारे प्रपंच का ही गुरु कहलाने वाली इस महाशक्ति से पाठ्य पुस्तकों के ढेर का बोझ उठाने की विनती क्यों करते हो, इस प्रकार कहता हुआ सा उसका मौन। भारत तथा जगत का इतिहास उसका आह्वान कर रहा था। उस समय कुरुक्षेत्र के अपने वचन का उसे स्मरण होता और शिष्ट रक्षण, धर्म संस्थापना या अर्थपूर्ण शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। बाबा कहा करते हैं, मैं अपने निज स्वरूप को प्रकट करने को उचित अवसर देख रहा था। तुम सबको यथेष्ट शिक्षण देने के पश्चात, अपने सत्य को जानने की मनोभूमि तैयार करने के पश्चात ही मैंने अपना स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट किया। सन 1940 के अक्टूबर की 20वीं तारीख को जगत की साधना तथा स्वयं संकल्प दोनों के सम्मिश्रण का सुमुहूर्त प्रारंभ हुआ। हम्पी से लौटने पर दूसरे दिन सत्यनारायण हाई स्कूल की ओर जा रहा था। उनके गांव लौटने का समाचार सुन उर्वा कोंडा के एक्साइज इंस्पेक्टर श्री आंजनेलू महाशय साइकिल पर सवार हो शीघ्र ही गलियों की राह काटते बाबा के सामने पहुंच नीचे उतर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शाला के मुख्य द्वार तक बाबा के पीछे पीछे गए। बाबा के चारों ओर उन्हें अलौकिक तेज राशि दिखाई दी। इच्छा रहित वह घर लौटे। लौटते समय वह इतने आनंद विभोर हो चुके थे कि साइकिल पर सवार होना भी भूल गए। साइकिल को ढोते ढोते उस दिव्य दर्शन के आनंद में ही मग्न हो वह धीरे धीरे घर पहुंचे। उस दिन बाबा शाला में अधिक देर तक नहीं ठहरे। लोग गति की सुधारणा का निश्चय कर कक्षा से निकलकर वे शेषम राजू के घर की ओर चल पड़े। देहरी पार करने के पूर्व ही पुस्तकों को बाईं ओर फेंक दिया। वह ध्वनि सुन भाभी सुशीलम्मा ने किवाड़ खोला। ओह, वह स्तब्ध रह गई। वे कहती हैं, सत्यनारायण की कांतियुक्त प्रभावशाली मुख को देखकर उसके दिव्य प्रकाश से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे मुख से चीख निकल पड़ी। उस साध्वी को देखते ही सत्या बोला, अब मैं आप लोगों का नहीं रहा, मैं तो अब चला, मेरा बहुत सा कार्य बाकी है। तुरंत ही घर की सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंचे। मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मेरा नियोजित कार्य ज्यों का त्यों पड़ा है, अब मैं चला।
आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग प्रस्तुत किए गए।
अब प्रस्तुत है हमारा भजन शिक्षा प्रोग्राम। कक्षा का संचालन करेंगे भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
राम राम भजो मन हरे हरे।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान राम का ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
राम राम भजो मन हरे हरे, साई राम भजो मन हरे हरे, रघुपति राजा राम राम पतित पावन सीता राम, साई राम भजो मन हरे हरे।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को जी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद पांच या सी अर्थात सफेद एक का मध्यम भी कहते हैं।
राम राम भजो मन हरे हरे,
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 साई 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 राम भजो मन हरे हरे,
राम राम भजो मन हरे हरे,
राम राम भजो मन हरे हरे,
रघुपति राजा राम राम,
रघुपति राजा राम राम,
रघुपति राजा राम राम,
रघुपति राजा राम राम,
पतित पावन सीताराम,
पतित पावन सीताराम,
पतित पावन सीताराम,
पतित पावन सीताराम,
साई राम भजो मन हरे हरे,
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 राम राम भजो मन हरे हरे।
कहरवा ताल और राग बिलावल पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। राम शब्द का अर्थ है वे जो मनमोहक हैं और जिनके प्रति प्रेम उमड़ता है। भगवान ने इसका गूढ़ अर्थ बताया है। राम तीन अक्षरों से बना है, र, अ और म से। र अग्नि देवता का द्योतक है जो सारे पापों को नष्ट कर देता है। अ सूर्य का द्योतक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। म है चंद्र देवता जो शीतलता और शांत चित्त प्रदान करते हैं। इस प्रकार राम नाम में तीन शक्तियां निहित हैं, पापों को धो डालने की शक्ति, अज्ञान को दूर करने की शक्ति एवं चित्त को शांत करने की शक्ति। इस भजन की प्रायः हर पंक्ति के अंत में आया शब्द हरे हरि का ही भिन्न रूप है। भगवान ने कहा है कि हरि का अर्थ है जो मार्ग में आने वाली बाधाओं को हर लें और साधना पथ पर अग्रसर होने में मदद करें। आते हैं भजन की पांचवी पंक्ति पर, पतित पावन सीताराम। पतित का अर्थ है गिरा हुआ अर्थात पापी। पावन का अर्थ है वे जो गिरे हुए का उद्धार करें। रामायण में कथा है कि अहल्या जी को उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि वे पत्थर की बन जाएं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब श्री राम के चरण कमल उन पर पड़ेंगे तभी उनका उद्धार होगा। सन 1996 के ग्रीष्मकालीन शिविर अर्थात समर कोर्स के दौरान दिए गए एक दिव्य संभाषण में स्वामी ने इस प्रसंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया था। उन्होंने कहा, भगवान राम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए थे। जब वे अहल्या जी की तरफ बढ़े, तब भगवान राम के चरणों से उत्सर्जित होती हुई ऊर्जा ने जड़ पत्थर पर एक नए जीवन का संचार कर दिया। उन्होंने तुरंत भगवान राम के श्री चरणों को कस कर पकड़ लिया और वे प्रार्थना करने लगी कि उन्हें क्षमा कर प्रभु उन पर कृपा वृष्टि करें। उसी क्षण श्री गौतम ऋषि वहां उस मौके पर प्रस्तुत हुए और पवित्र अहिल्या जी को उन्होंने स्वीकार किया। ये दृश्य प्रतीकात्मक है। हम और आप किसी न किसी तरह से अपने दुर्गुणों के कारण पत्थर की तरह ही जड़वत हो गए हैं, लेकिन जब भगवान का पदार्पण हमारे जीवन में होता है तब हम फिर से पावन एवं पवित्र हो जाते हैं। भगवान ही हमारी जाने अनजाने में हुई गलतियों को माफ कर हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में उनके अस्तित्व का परिचय कराकर हम में रूपांतरण लाएं। हम सबको ज्ञात है कि जब राजा जनक यज्ञ करने के लिए भूमि में हल चला रहे थे, तब उन्हें भूमि के अंदर एक पात्र मिला। जब उन्होंने उसे निकालकर देखा तो उन्हें उसमें एक सुंदर कन्या मिली। उन्होंने उसका नाम सीता रखा और वे उसका लालन पालन करने लगे। भगवान ने कहा कि सीता भूमि से उत्पन्न हुई और पृथ्वी माता की पुत्री हैं, इसीलिए वे प्रकृति की द्योतक हैं। अब सीताराम के गूढ़ार्थ पर ध्यान देते हैं। भगवान ने कहा कि माता सीता प्रकृति हैं और भगवान राम सनातन चैतन्य शक्ति हैं, जिनसे प्रकृति का उद्गम हुआ। इस तरह से भगवान राम प्रकृति के स्वामी हैं। जिस प्रकार हम मनुष्य भगवान के अंश हैं, उसी प्रकार वैभवशाली एवं विविधताओं से भरपूर ये प्रकृति भी भगवान की ही अंश है। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, ना कि उसका शोषण करें। अकस्मात प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, ये प्रकृति से प्राप्त सूचना है कि हमें उनके द्वारा दी हुई भेंट का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रकृति में संतुलन बनाए रखें तो हमें प्राकृतिक प्रकोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस संदर्भ में एक घटना ध्यान में आती है। सन 1795 में बंगाल की खाड़ी में दबाव के चलते मधुरांतकम में भारी वर्षा हो रही थी। उस समय के कलेक्टर कर्नल लायनल प्राइस जी ने लोगों को आगाह किया कि तालाब भर चुका है, इसीलिए आसपास के इलाकों में तबाही की संभावना है। वे मधुरांतकम की तरफ रवाना हुए, तालाब का निरीक्षण किया और आदेश दिया कि तालाब के किनारे की दरारों को बंद किया जाए। तत्पश्चात उन्होंने राम जी के मंदिर जाने का निश्चय किया। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मंदिर को जीर्ण अवस्था में पाया। उन्होंने देखा कि मंदिर के एक कोने में ईंटों को जमा कर रखा गया है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि ये ईंटें माता सीता के मंदिर निर्माण हेतु रखी गई हैं। पैसों की कमी की वजह से मंदिर निर्माण का कार्य रुका हुआ है। पुजारी ने कहा, अक्सर चक्रवातों के कारण तालाब भर जाता है और पानी के बहाव के कारण हर वर्ष लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए वे मंदिर निर्माण हेतु पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे। कर्नल प्राइस ने कहा, आपके राम आपको बचाने क्यों नहीं आते? वे तालाब की रक्षा कर अपनी पत्नी सीता के मंदिर निर्माण कार्य के लिए सहायता क्यों नहीं करते हैं? मंदिर के संचालकों को यह सुनकर बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने कहा, अगली बार आपात स्थिति में आप भगवान राम को हमारी मदद करते हुए पाएंगे। कुछ समय बाद भारी वर्षा हुई और स्थिति गंभीर हो गई। कर्नल प्राइस मधुरांतकम पहुंचे और उन्होंने तूफान का उग्र रूप और प्रकृति के प्रकोप को देखा। उन्हें लगा सिर्फ भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। अब जब वे ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मंदिर में भारी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रभु श्री राम की महिमा और उनकी शक्तियों का वर्णन लगातार कर रहे हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी होने के बावजूद उन्होंने प्रार्थना की, हे राम, मैंने सुना है आप महान हैं, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। अगर आपने मेरी प्रार्थना सुनी तो मैं माता सीता के मंदिर निर्माण कार्य को करूंगा। जैसे ही उन्होंने ऐसी प्रार्थना की, उन्होंने देखा कि बिजली कड़की और उस प्रकाश में उन्हें श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्राइस जी ने कहा, वहां देखो, और मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तब उन्होंने अपने आप को अपने घर में अपने बिस्तर पर पाया, और जब उन्होंने सुना कि बारिश कम हो गई है, तालाब का पानी खतरे की लकीर से नीचे आ गया है, ये सुनकर उन्हें बड़ी राहत मिली। उनका हृदय भगवान के लिए कृतज्ञता से भर गया, जिन्होंने बड़े ही नाटकीय ढंग से उनकी रक्षा की थी। मधुरांतकम के निवासियों को भी बोध हुआ कि भगवान राम ने उनकी रक्षा की। आज भी उस मंदिर में भगवान राम की जयकार करते वक्त कहते हैं, भगवान राम जिन्होंने तालाब की रक्षा की उनकी जय। भगवान राम निश्चित रूप से प्रकृति के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें सीताराम के नाम से संबोधित करना सर्वथा उचित है। साई राम, हमारे स्वामी का भगवान राम से संबंधित एक बहुत ही अच्छा और रोमांचक कथा वृत्तांत है। बाबा की एक बहुत बड़ी और वयोवृद्ध भक्त थी शारदा जी। बाबा उन्हें पेद्दा बोट्टू कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे माथे पर कुमकुम का एक बहुत बड़ा सा टीका बिंदी के स्थान पर लगाती थी। माता ईश्वरम्मा जी के देहावसान के कुछ दिन पूर्व उन्होंने पेद्दा बोट्टू जी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, आप किसी को मत बताना। पेद्दा बोट्टू जी उनके समीप सरकते हुए बोली, क्या बात है मां, बताइए। ईश्वरम्मा जी ने धीरे से उनके कान में कहा, हमारे स्वामी भगवान हैं। पेद्दा बोट्टू जी ये सुनते ही जोर से हंस पड़ी। ईश्वरम्मा जी ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो, मैं सच कह रही हूं। पेद्दा बोट्टू जी ने क्षमा भाव से कहा, मैं आप पर नहीं हंस रही हूं अम्मा, मुझे खुशी है कि आपको आखिरकार ये महसूस हो ही गया, पर जरा बताइए तो कि आपको ये अनुभूति हुई कैसे। ईश्वरम्मा जी ने कहा कि मुझे 4 दिनों से बहुत तेज बुखार है, स्वामी मेरे पास आए। पेद्दा बोट्टू जी ने टोकते हुए पूछा, सपने में। ईश्वरम्मा जी बोली, नहीं, जागृत अवस्था में आए थे, जब मैं बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराहते हुए करवटें बदल रही थी, और उन्होंने मुझसे पूछा, अम्माई कैसी तबीयत है। मैंने कहा, स्वामी पूरा बदन दर्द से फटा जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। मैं कैसे बताऊं पेद्दा बोट्टू, वे उस वक्त ऐसे स्वामी नहीं थे जैसे कि हम जानते हैं, वे रामचंद्र जी के रूप में थे, सिर पर मुकुट और हाथों में कोदंड लिए हुए। मैं हाथ जोड़कर उठने की कोशिश करने लगी तो वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और विभूति प्रसाद मुझे देते हुए बोले, अब बुखार ठीक हो जाएगा, और फिर चले गए। पेद्दा बोट्टू जी बोली, आपका परम सौभाग्य है, आपको पूरे होशो हवास में अपनी जागृत अवस्था में स्वामी का दर्शन प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में हुआ, ऐसा दर्शन अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। आप और हम साईराम के चरणों में अपने आप को अर्पित कर, अपने हृदय को उनकी भावनाओं से भरकर, भाव विह्वल होकर एक बार फिर इस भजन को गाते हैं।
राम राम भजो मन हरे हरे, राम राम भजो मन हरे हरे, साई राम भजो मन हरे हरे, साई राम भजो मन हरे हरे, साई राम भजो मन हरे हरे।
इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण रास आया होगा। हम जल्दी ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सधन्यवाद। जय साई राम।
आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी।
अब प्रस्तुत है साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम।
आज इसके अंतर्गत हम भारतीय नौसेना में कप्तान रहे श्री वीरेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी के साथ टीम रेडियो साई की ओर से श्रीमती नीता बैनर्जी जी के मध्य हुई भेंट वार्ता सुनेंगे।
अग्रवाल जी, आपका रेडियो साई के स्टूडियो में स्वागत है। साई राम, आप स्वामी के फोल्ड में या स्वामी के करीब कैसे आए, जरा हमारे श्रोताओं के लिए बताएं।
सबसे पहले मैंने स्वामी के बारे में किताबों में पढ़ा
जी।
फिर धीरे धीरे हमारे शिप में भी एक कैडेट था, उस वक्त मैं जूनियर ऑफिसर का एग्जाम पास कर चुका था।
अच्छा, आप जहाज पर काम करते रहे?
हाँ।
अच्छा,
तो उस वक्त शिप रशिया में था
जी।
उनके मदर फादर स्वामी के डिवोटी थे, उनके पास एक किताब थी डॉक्टर फनी बंदा की
जी,
तो वो मैंने पढ़ी। उसको भी पढ़ के मैं ऐसा भूल सा गया, जैसे कोई ऐसा खास इम्प्रेशन नहीं मुझ पर बैठा।
हाँ जी।
फिर उसके बाद जब वापस आया मैं घर में छुट्टी में, फिर उसमें शिपिंग में स्लम्प आना शुरू हो गया
जी। जी,
मतलब नौकरी मिलनी कठिन हो गई ये। हाँ। सब क्योंकि
ये शायद 80 के दशक की बात।
हाँ, 80 के दशक
है, जी।
देन नेचुरली ये हुआ कि अब थोड़ा धक्के खा रहा आदमी तो भगवान के पास भागता है,
ज्यादा याद आते हैं।
फिर मुझे ऐसे करते करते 85 हो गया, 3-4 साल नौकरी नहीं की।
अच्छा।
हाँ। और बिल्कुल फाइनेंशियल पोजिशन खराब हो गई। कुछ स्वामी के बारे में भी जो पढ़ा तो मुझे क्या था कि पता नहीं वहां जाऊंगा क्या रिप्लाई मिलेगा स्वामी के पास।
आपका यहाँ आने का मन था दर्शन?
हाँ, हाँ।
अच्छा अच्छा।
एक किस्म का डर सा बैठा हुआ था क्योंकि इतने फेक महात्मा लोग हैं, तो आदमी सभी को उस कैटेगरी में डालने के
असमंजस में तो पड़
हाँ, जाता है
जी।
फिर मेरे को अचानक में वो जो उस किताब विजन ऑफ डिवाइन में मैंने पढ़ा था स्वामी के बारे में, तो एक लाइन अचानक में इट सरफेस्ड फ्रॉम माय सबकॉन्शियस ऊपर
पूरी किताब में से एक लाइन।
हाँ, हाँ, एक लाइन।
अच्छा।
कि फियर इज फेड एंड फर्टिलाइज इन योर माइंड
जी,
यू कैन ओवरकम बाय डिनाइंग इट।
अच्छा, डर जो है, भय जो है, ये अंदर से उपजता नहीं है, ये बाहर से हमारे मन में डाला जाता है। और बाबा का ये कहना था कि डर जो कि तुम पर बाहर से थोपा गया है, तुम ही उसे नकार सकते हो, तुम्हारी अंदर की अपनी जो हिम्मत है उससे तुम उसे भगा सकते हो जी। फिर क्या हुआ?
फिर तो मुझ में जैसे एकदम हिम्मत सी आ गई, पता नहीं वो सेंटेंस ऐसे जैसे सरफेस हुआ, इमीडिएटली मैंने टिकट बुक कराया, वहाँ बॉम्बे में धर्म क्षेत्र गया
जी,
वहां से उनका पूछा, उन्होंने बताया कैसे यहाँ आना है, आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कैसे पहुंचना है।
पुट्टपर्ती आने के लिए ये सब चल रहा था?
हाँ
जी जी।
तो फिर मैं पुट्टपर्ती आया, और पुट्टपर्ती भी आया स्वामी के साथ ऐसा कोई खास इंटरेक्शन नहीं हुआ,
लेकिन दर्शन पहली बार पर्ती में ही हुए।
पर्ती में ही हुए।
अच्छा।
5-6 दिन रहा।
हाँ जी।
वापस गया बॉम्बे में, फट करके नौकरी भी मिल गई जबकि बात भी नहीं हुई थी स्वामी से,
कोई चिट्ठी कोई अर्जी, स्वामी प्लीज ये कर दीजिए,
कुछ
नहीं। अच्छा।
तो ये देखिए, लेकिन अपने में ईगो है, है और उस वक्त इतना आई वॉज स्टिल इवॉल्विंग यू कैन से, तो नौकरी भी मिल गई, कभी सोचा भी नहीं कि ये स्वामी की दया से ही हुआ है एक्चुअली।
अच्छा, आपने कनेक्ट भी नहीं किया?
हाँ, आई कुड नॉट कनेक्ट इट। फिर क्या हुआ, 1.5 साल मैंने अच्छी लग के नौकरी की, पैसा हाँ। भी आया, सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद फिर स्लम्प आ गया शिपिंग में।
अच्छा।
हाँ अच्छा, उस फिगर अगेन आई वेंट इन टू डिप्रेशन लाइक। तो क्या हुआ कि ऐसे ही लखनऊ में हम घर में बैठे थे अपने मदर फादर के साथ बरांडे में, और मेरा कभी मन में विचार नहीं आया कि किसी ज्योतिष को दिखाऊं या कुछ। तो बरांडे में बैठे हुए थे, एक कोई ज्योतिष पास कर रहा था बरांडे से, इधर से रोड से। तो मदर फादर ने उन्हें बुला लिया, मैं तो दिखाना नहीं चाहता था, उन्होंने बोला नहीं दिखाओ। तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं क्योंकि इन लोग बोल रहे हैं। पता नहीं उसने कुछ उल्टा कुछ ऐसा खास तो बताया नहीं, बल्कि और डर मेरे मन में बिठा दिया कि संभल के रहना, कोई चाकू मार देगा तुम्हें। तो मेरे वो दिमाग में बैठ गई, क्योंकि हम लोग का हिंदुस्तान में ऐसा है कि इन चीजों में हम लोग काफी विश्वास हाँ। करते हैं। फिर वो तो मेरे दिमाग में ऐसे, मैं जहां जाऊं, बॉम्बे जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पीछे से मार देगा आगे चाकू, ऐसे डर। फिर धीरे धीरे फिर स्वामी के ऊपर मेरा ध्यान गया।
वो बात आपको अब याद नहीं आई कि डर तुम पर थोपा जाता है बाहर से?
नहीं, वो उस वक्त स्ट्राइक नहीं हुई,
लेकिन याद नहीं है।
हाँ, फिर मैं 89 में आया यहाँ। 70 दिन मैं यहाँ बैठा रहा, डेली स्वामी को लेटर दूं, ये वो करूं, मतलब बैठा रहता था, स्वामी लेटर ही नहीं लेते थे
उस वक्त, बेरोजगारी की ही हालत में।
हाँ
अच्छा।
तो फिर एक दिन स्वामी आए, मैं भजन और ब्रेकफास्ट के बीच में जो 1-2 घंटे टाइम होता है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आया, बैठा, स्वामी इंटरव्यू देके निकले, सीधा इंटरव्यू रूम से मेरे पास आए। उन दिनों तो वहाँ ये कुलवंत हॉल नहीं होता था
जी, रेत पर बैठा था,
मुश्किल से 4-5 लोग बैठे थे, सीधा आए मेरी तरफ और मेरा लेटर ले लिया।
इस बार आपने लिख के कुछ कहा था?
हाँ, लिख खाली आए, ओनली रोड 3 वर्ड्स, गॉड प्लीज हेल्प।
ओके।
वो लेटर मैं 70 दिन से लेके बैठा हूँ और दिया, और वो देते ही आप मानेंगे नहीं, मैंने जैसे स्वामी को लेटर दिया, मेरे बदन से जैसे चाकू, हर एक डायरेक्शन में चाकू निकलने लगे बाहर, एंड आई फेल्ट सो लाइट, आई कुड सी देयर फ्लाइंग इनटू द एयर आउटसाइड।
अच्छा, ये प्रतीक था उस डर का?
हाँ।
जो चाकू के रूप में आपके दिमाग में बैठा हाँ, दिया गया था
हाँ,
और अब स्वामी ने उस डर को ऐसे अनुभव से आपको आश्वस्त किया कि जितने चाकू थे या
हाँ,
कल्पनाएं थी चाकू
हाँ,
के सब निकल गए
हाँ,
अब तुम बिल्कुल निर्भय हाँ, होकर
रहो। देखिए, मतलब स्वामी को मैंने बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं, स्वामी को पता था, जब लेटर लेते ही जैसे कि मतलब स्वामी ने ही ट्रांसफर्ड सम एनर्जी या कुछ जो भी है, तो इतना लाइट फील किया मैंने, सब कुछ है, उसके बाद से वो डर कभी बैठा ही नहीं मेरे। 30-40 साल जो भी निकल गए अभी बीच में।
फिर आप यहीं रहे कि चले गए उसके?
फिर उसके बाद तो करीब करीब स्वामी ने पूरा ही संभाल लिया मुझे। फिर मैं हर एक साल 2-3 महीने काम करता था, 7-8 महीने पुटापर्थी रहता था।
अच्छा,
ऐसे कर, क्योंकि हम लोग के शिपिंग में कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी मिलते हैं, आप 2 या 3 महीने के ले सकते हैं।
अच्छा
अच्छा। तो जब पैसा खत्म हो जाता था फिर चले जाता था, फिर ऐसा है।
उसके बाद फिर यहाँ आके रहना कैसे आपके मन में आया?
फिर क्या हुआ, 89 में, और हम लोग का शिप ज्वाइन करने के पहले बड़ा रिग्रस मेडिकल भी होता है
जी,
हाँ, ECG, एक्सरे, ये वो, ब्लड टेस्ट। तो 89 में एक बार क्या हुआ, डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि मेरे एक हार्ट की पल्स मिस होती है। तो मैंने कहा ये तो मेरा करियर चौपट हो गया शायद। तो जगह जगह चेक करवाया, सब डॉक्टर बोलते हैं, कहते हैं इट्स नॉट डेंजरस,
आम बात है।
हाँ, आम बात है, कहते हैं एक पल्स मिस होना कुछ हर एक आठ पल्स, लेकिन शिपिंग डॉक्टर्स विल नॉट एग्री टू दैट, क्योंकि उनको तो अपने कंपनी को दे हैव टू कीप दिस। 89 के बाद भी मैंने 10-12 शिप ज्वाइन किए, हर एक मेडिकल टेस्ट में स्वामी मेड मी पास, यू विल नॉट बिलीव।
अच्छा, कहीं कुछ चूक नहीं पकड़ी गई?
वो नोटिस भी कर लेते तो दे वुड यू नो विलिंगली नेग्लेक्टेड,
लिखते नहीं
थे। हाँ, लिखते नहीं थे। और एक बार तो बल्कि वो कंपाउंडर ने जब सब लीड्स लगा रखी थी ECG की मेरी,
हाँ जी,
चेक कर रहा था, तो उसने डॉक्टर से, मैंने सुना भी डॉक्टर से, सर V1 लीड जो V1 होती है, कुछ बोला सर इसमें कुछ गड़बड़ है, जाने दो मैन इस डॉक्टर। तो उसके बाद 89 से लेकर 2007 तक करीब 18 साल में मैंने 10-12 शिप किए, कहीं पर भी मेरे को मेडिकल का प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम रहा अभी तक है, हैं, कभी नहीं कुछ हुआ,
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा।
हाँ।
आप इतने दिनों तक इतने स्वामी के करीब रहे, आपको पहले के जीवन में, आपके पहले के युवावस्था के स्वभाव में, और अब के स्वामी के शरण में आने के बाद के जीवन में अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं?
एक्चुअली बदलाव तो मैं यूं कहूंगा कि जब तक पूरी पीस ना मिल जाए आदमी को,
हाँ जी,
तो बदलाव भी पीस पे ही पूरा उस पर डिपेंड करता है आदमी कितनी शांत अवस्था में। और अपने आप को जज करना बड़ा मुश्किल है अगर आप आज सोच लें हाँ मैंने एंगर कंट्रोल कर लिया है, दूसरे ही दिन स्वामी विल मेक श्योर ही टेस्ट यू,
टेस्ट लेंगे आप, हाँ बिल्कुल जरूर लेते हैं।
तो इसे बहुत डिफिकल्ट अपने आप को ये वो करना, लेकिन मैं ये कहूंगा कि काफी पॉइज, मतलब जैसे जो मेरे 80s में था, आई एम मच इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ ऐसे
जी। और वो जो भय नाम की चीज, दोबारा कभी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि आपको फिर से किसी भी बात का डर सता?
नहीं नहीं, अब तो नहीं। और अब तो स्वामी ने मेरी आदत कुछ ऐसी डाल दी है, हालांकि मैं इतना नहीं, फिर भी थोड़ा नाम जप करते रहता हूँ तो उससे, और कभी भय होने से भी तो नाम जप और बढ़ा देते हैं जैसे खुद अपने।
अच्छा, अच्छा।
और अब यहाँ रूटीन बन गया साधना का ये वो, तो स्वामी इज टेकिंग केयर,
प्रति में ही रहना है, स्वामी का नाम स्मरण करना है, जब तक साधना जो करना है यही करना है।
जब तक स्वामी का कोई आदेश ना आए या कोई आई डू नॉट गेट एनी क्लू और समथिंग, आई मस्ट कंटिन्यू हियर, दिस इज माय प्रॉमिस टू स्वामी।
तो आप प्रति से बाहर जाते ही नहीं है?
ना,
20 सालों से तो मैं देख रही हूँ आपको।
मतलब 2007 में मैं लास्ट गया था, जब लास्ट शिफ्ट किया, तो उसके बाद से अब मैं बाहर नहीं गया बिल्कुल।
स्वामी की शिक्षाएं, उनके सिखाए गए जीवन मूल्य आज के समाज में आपको धीरे 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 जो बदलाव ला रहे हैं, आपका ध्यान कभी जाता है उनकी तरफ कि स्वामी की शिक्षाओं को या मानवीय मूल्यों को हम बाल विकास के थ्रू यूथ को ट्रेन करके और अपनी परंपराओं का, धार्मिक जितनी किताबें हैं इन सब के बारे में गीत या भजन या ड्रामा या कुछ भी करके आगे की पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं?
स्वामी का एक्चुअली जो मिशन है
जी
है? वो मल्टीफेसेटेड है, आप देखिए।
हाँ।
एक सबसे पहला तो वो स्वामी का जो मानस भजरे, मतलब भक्तोद्धारण,
भक्तोद्धारण जी
है। दूसरा ये बाल विकास वगैरह के थ्रू धर्म संस्थापना,
हाँ।
और पीस, मतलब शांति, हाँ, का एटमोसफेयर के। और सबसे बड़ा मुझे स्वामी का अभी भी जो सबसे अच्छा लगता है, स्वामी ने जो वेद का प्रचार शुरू किया है,
हाँ।
वो तो मुझे लगता है रुकेगा नहीं, जैसे
नहीं अब तो कोई रोक नहीं सकता किसी के,
वेद
रोके
का,
नहीं
वेद का इतना अच्छे ढंग से हो रहा है, सब लोग छोटे छोटा बच्चा रुद्रम कर लेता है सब कुछ, मैं तो दंग रह जाता हूँ सुन के।
और उनकी वाइब्रेशन जो है, ध्वनि तरंगे इन चीजों की, सारे विश्व में फैलती जा रही है। इनसे आप भी प्रभावित हुए हैं और इतने प्रभावित हुए हैं कि आपको सिर्फ स्वामी के पास ही रहना, यही रहना, उनको स्मरण करते रहना यही भाता है। तो ये चीजें स्वामी की कृपा के बिना नहीं होती हैं,
ये पक्की बात है।
उन्होंने जो भक्ति आपको दी है, जिस साधना में आप रत हैं, जिस साधना में आप लीन हैं, उसी तरह का शांति वाला, स्थायित्व वाला जीवन यापन करते रहें और स्वामी की कृपा उत्तरोत्तर आप पर बढ़ती जाए, इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपका रेडियो साईं की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
साईं राम।
वीरेंद्र जी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार।
आज इसके अंतर्गत हमने नौसेना के कप्तान श्री वीरेंद्र स्वरूप अग्रवाल जी के साथ 8 मार्च सन 2018 को हुआ वार्तालाप प्रस्तुत किया।
आप सुनिए अवतार वाणी।
भगवान बाबा द्वारा 12 मई 1982 को मुंबई स्थित निवासाश्रम धर्मक्षेत्र की स्थापना दिवस की एक वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
प्रेम स्वरूप लारा
ఘనముగానుండును కంచునందు మ్రోత కనకమందు మ్రోత కానబడదు అల్పులయందుండు ఆడంబరము మెండు అల్పులయందుండు ఆడంబరము మెండు పైన పూతలేల భక్తులకును పైన పూతలేల భక్తులకును పైన పూతలేల భక్తులకును
అక్సర్ దేఖా జాతా హై कांसे की आवाज बहुत बुलंद होती है, जबकि सोने की आवाज न दिखाई देती है न सुनाई पड़ती है। इसी तरह से खोटा आदमी हमेशा आडंबर के पीछे चलता है, जबकि अच्छा आदमी भक्त आडंबर के पीछे नहीं चलता है। उसको आडंबर की क्या आवश्यकता है?
प्रेम स्वरूप साधारण मानव मूड विधम स्वभाव उन्नवि
प्राय आत्मी के तीन प्रकार के लक्षण होते हैं।
मोदी कर्मशीलता
सबसे पहला है कर्मशीलता, काम करने की प्रवृत्ति।
इधि सामाजिक कार्यमुन गृहकृत्यमुन सांघिक सेवलुन
ये सामाजिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। इस प्रकार का उत्तरदायित्व
निरंतरमु मानवन को कर्म दीक्ष एंदे मक्कुव एक्कुव
अक्सर आत्मी की प्रवृत्ति कर्म निष्ठा की ओर अधिक होती है।
रेंडवदी भक्ति रसा स्वभावम
दूसरा लक्षण है भक्ति की ओर प्रवृत्ति।
इदि केवलम संकीर्तनल यंदु कानी स्मरणल यंदु कानी षोडशोपचारमल यंदु कानी दैवमनु आराधिस्तू ఆనందిస్తూ అనుభవిస్తూ అందరికి అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు।
భక్తి కే మార్గ కా జో అనుసరణ కర్తే హై వే యా తో భగవాన్ కా నామ లేకర్ సంకీర్తన కర్తే హై భగవాన్ కా నామ స్మరణ కర్తే హై 16 ప్రకార కే ఉపచారో సే భగవాన్ కీ ఆరాధనా భీ కర్తే హై।
మూడవ స్వభావము విచారణాత్మకము
తీసరా లక్షణ హై విచారశీలత చింతన శక్తి।
దీనిని ఇమోషనల్ అని యాక్టివ్ అని रेशनल अनी दीनी चेप्तु वच्चारू।
इसे को आवेगात्मक क्रियात्मक और हेतु मूलक कहा जाता है।
इदि तत्व विचारणमु यंदु मानवुडु तम योक्क दिव्यत्वानी पवित्रतनु आत्मतत्वानी कोंतवरकु गुर्तिंचडानिकि प्रयत्निंचडम।
इस तत्व चिंतन में आत्मी का कर्तव्य होता है कि वो अपने अंदर की दिव्यता को पहचाने, अपने अंदर की पवित्रता को पहचाने और अपने आप को पहचाने।
दीनिनी कर्म भक्ति ज्ञानमलू पिलुस्तु वच्चारु।
इसे को कर्म भक्ति और ज्ञान के नाम भी दिए जाते हैं।
इवि मूडु कुडनु वेरु वेरु कानेरवु
ये तीनों अलग अलग नहीं है।
ई मूडिंटि योक्क एकत्वमे मानवुनि योक्क पूर्णत्वमु
इन तीनों की एकता ही मानव की परिपूर्णता है।
इवि मूडु कुडनु ओकदानितो ओकटि स्त्रीलु वेसुकुनेटुवंटि जडवले पेन वेसुकोनि उंटुंटायि।
ये तीनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे स्त्रियों की वेणी होती है।
इदि वेरु चेसिना कूडनु इदि साध्यमयेटुवंटि विषयं कादु
इन तीनों को अलग करना भी संभव नहीं है।
पूलेक काये पुट्टदु चेट्टुना कायिलेक फलमु कलुगबोदु
फूल के बिना एक पेड़ में कच्चा फल नहीं हो सकता है, कच्चे फल के बिना पक्का फल भी नहीं हो सकता।
कर्म निष्ठ लेक भक्ति युकु दुरदु भक्ति लेक ज्ञान प्रथमुडगुना
कर्म के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति भी संभव नहीं है।
चित्त शुद्धि चेत एर्पड़िनटुवंटि कर्मल द्वारा उपासना प्रभावमु मानव यंदु आविर्भविस्तुंदी।
अच्छे काम करने से आत्मी का मन निर्मल हो जाता है और वो उपासना की ओर प्रवृत्त हो जाता है।
ई उपासना योक्क प्रभाव में ज्ञान स्वरूपाने धरिस्तुंटादी।
उपासना ही धीरे धीरे ज्ञान का रूप धारण करती है।
कनुकने अन्निंटिकिनी प्रधानमु मूलाधारमैनटुवंटिदी कर्म।
इसलिए सबके मूल में जो भावना है वो काम करने की भावना है।
चित्तस्य शुद्धये कर्मः कर्म द्वारा चित्त शुद्धि एर्पड़ती।
मन की पवित्रता के लिए ही काम किए जाते हैं।
मानवुनि योक्क सत्तानु निरूपिंचेटुवंटिदे कर्म।
मानव की सत्ता को प्रतिपादित करने वाली चीज ही कर्म है।
मानवुडु एट्टि स्वभावमुनंदु जगत्तुलो जीविंचुचुन्नाडनेटुवंटि यदार्थान्नि निरूपिंचेटुवंटिदे कर्म।
मानव किस प्रकार के स्वभाव से संसार में जी रहा है इसको निरूपित करता है कर्म।
मन मुखम योक्क मंचि चेड्डलु अर्धमु निरूपिंचिनट्टुगा मानवुनि योक्क मंचि चेड्डलु कर्म निरूपिस्तू उंटादि।
जैसे हमारे चेहरे की अच्छाई बुराई आईने में प्रतिबिंबित होती है उसी प्रकार मानव का चरित्र अपने कर्म में प्रतिबिंबित होता है।
कनुकने कर्म अन्नटुवंटिदि मनलो उंडिनटुवंटि उद्रेकमुलकु कानि लेक उल्लासमुलकु कानि तेजस्सुनकु कानि दिव्यत्वमुनकु कानि आधारमैनटुवंटि ओक निरूपणगा अद्दं पट्टि चूपुतुंदि।
इसलिए कर्म हमारे अंदर के आवेग को, हर्ष को, अमर्ष को, तेज को, उत्साह को प्रतिबिंबित करके हमको दिखाई पड़ता है।
मानव ने उन्नत स्थाई की गुणपोन्नति का अधम स्थाई की दिग्दुक्नति का कर्म ने।
मानव को ऊपर ले जाने वाला और नीचे ढकेलने वाला दोनों कर्म है।
कर्म मुना पुट्टु जीवुडु,
कर्म में ही जीव की उत्पत्ति,
कर्म मुना ने वृद्धि पुंदु,
कर्म में ही पलता है,
कर्म मुने चनुन,
कर्म में ही उसकी मृत्यु,
कर्म मुने दैवमु,
कर्म ही दैव है।
कर्म में सुख दुख मुलकु कारण मिललु,
कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण बन जाता है।
कनुकने मानवुड चूचटकु परम शांतमुगा लौकिकंगा गोचरं कावच्चु,
देखने में आदमी बहुत शांत दिखाई दे सकता है।
कानी कर्मलो प्रवेशिंचिनप्पुडु तन योक्क रजोगुणं कानी तमोगुणं कानी प्रदर्शिस्तुंटाडु,
लेकिन जब काम करने लग जाता है उसके अंदर की रजगुण तमोगुण आदि प्रकट होते हैं।
कोंदरु सामान्य समय मिलंदु उद्रेकमुगा कनिपिंचवच्चुनु,
कुछ लोग आम समय में आवेगशील हो सकते हैं।
कर्मनिष्ठ यंदु परम शांतमुगा तम स्वभाव निरूपिस्तु उंटारु,
लेकिन काम करते समय बहुत ही शांत स्वभाव के हो सकते हैं।
कनुकने ई शांतमुनक कानी उद्रेकमुनक कानी तापमुनक कानी पापमुनक कानी कर्मने मूल कारणमु,
इसलिए इस प्रकार की शांति और उद्वेग का, ताप और पाप का कारण कर्म ही है।
कनुक मानवुडु కర్మను ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం నందుంచుకుని మన జీవిత యాత్రను సాగించవలసి వస్తుంది.
ఇసులే మనుష్యకో చాహియే కో కర్మకో ప్రధాన్ మాన్కర్ అప్నే జీవన్ యాత్ర చలాయే.
ప్రతి కర్మ కూడాను భగవత్ అర్పితము గావించి చేసేటువంటి కర్మల యందు ఎట్టి భారము కాని ఎట్టి బాధలు కాని అందులో మనకు కలుగనేరవు.
जब हम भगवान को अर्पित करके हर काम करते हैं तो उस समय हमारे अंदर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती।
सर्व कर्म भगवत प्रीत्यर्थमैनटुवंटि भावमुचे कर्मल आचरिंचिनप्पुडु मानवुडु धन्युडु अवुताडु।
भगवान को अर्पित कर जब काम किए जाते हैं तब काम करने वाला धन्य बन जाता है।
मानवत्वम योक्क दिव्यत्वानि मनं चक्कगा निरूपिंचडानिकि ओक चिन्न उदाहरणमु।
मानवता के अंदर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है।
मनं केवलमु व्यक्तिगतमैन తత్వాన్ని మనము అనుభవిస్తున్నాము.
హం కేవల్ ఏక్ వ్యక్తిగత తత్వ కా అనుభవ కర్ రహే హం.
సమష్టి తత్వాన్ని మనం ఏనాడు అభివృద్ధి గావించుకుందుమో ఆనాడే సర్వేశ్వరత్వం కూడాను మనలో వికసిస్తుంది.
జబ్ హమారే అందర్ సమష్టికి సబ్కి భావన పైదా హో జాతీ హై తభీ హమారే అందర్ కి దివ్యత ప్రకట్ హోతీ హై.
విశ్వ విరాట స్వరూపమైనటువంటి తత్వాన్ని మనలో నిరూపిస్తుంది.
तभी हमारे अंदर का विश्व रूप विराट रूप प्रकट हो जाता है।
मन एकत्व मानवत्वानि अनंतत्व तो मन पोल्चुकोवाली।
हमारे अंदर मानवता की जो एकता है वो अनंतता है।
दैव प्रत्येकमुगा लेडु,
भगवान कहीं अलग नहीं है।
जीवी इंटू अनंतमु इनफिनिटी इज इक्वल गॉड अन्नारु।
जीवी से अनंत को गुणा करने से भगवान की उत्पत्ति हो जाती है।
करुकनी मन मानवत्व अनेटुवंटि दानिनि अनंतत्व तो विचारमैनटुवंटि भावंतो అభివృద్ధి పరిచినప్పుడు ఇదే హిరణ్య స్వరూపుడు అంటారు.
ఇసే ప్రకార్ జబ్ మానవ్ కో హమ్ అనంత రూప్ మే సాక్షాత్కార్ కర్తే హై తభీ వో హిరణ్య గర్భ కా రూప్ ధారణ కర్తా హై.
కనుక విరాట స్వరూపం కాని లేక హిరణ్య గర్భ స్వరూపం కాని మానవత్వం నిందే ఉన్నది కాని బయట ప్రపంచమునందు కానరాదు.
చాహే భగవాన్ కా విరాట్ రూప్ హో యా హిరణ్య గర్భ రూప్ హో దోనో మానవతా కే అందర్ హీ హై.
కనుకనే మానవత్వం అన్నటువంటిది జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం, ఇట్టి పవిత్రమైన మానవత్వం ప్రాప్తించటము అరుదు.
ఇసులే మానవ కా జన్మ లేనా బహుత్ హీ దుర్లభ మానా జాతా హై సబ్ జానవరో మే.
మానవత్వం నుండి ఆత్మతత్వం కాని దైవత్వం నుండున్నటువంటి దివ్యత్వం కాని ఒక్కటియే, అనేకము కానేరదు.
మానవతా కే అందర్ కే ఆత్మతత్వ ఆర్ భగవాన్ కే అందర్ కా దివ్యతత్వ వాస్తవ మే ఏక్ హీ హై, అలగ్ నహీ హై.
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी.
आज हमने धर्म क्षेत्र की स्थापना दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग प्रस्तुत किया था.
प्रशांति निलयम से प्रसारित किए जा रहे हिंदी कार्यक्रम साईं प्रेम वाणी में आपका एक बार पुनः स्वागत है. कार्यक्रम के इस भाग में गान सरिता में आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए तैयार किए गए एक मधुर गीत ओम जपो हरि ओम जपो को। इस गीत में ओमकार के उच्चारण के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ सांसारिक जीवन की यात्रा के भी महत्व को बताया गया है। अभी हमने ओम जपो हरि ओम जपो की मधुर प्रस्तुति को सुना। इस गीत को श्री सत्य साई बाल विकास कार्यक्रम के भूतपूर्व छात्रों के सम्मेलन माह जनवरी 2018 के सम्मेलन में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बच्चों ने साई कुलवंत हॉल में स्वामी को समर्पित किया था। इस गीत को साई संस्कार गीतमाला भाग एक से लिया गया है, जिसमें बाल विकास के मूल्य गीतों का संकलन है एवं इस गीतमाला का प्रकाशन श्री सत्य साई बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है।
इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393-258-258-9393-258-258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं।
हमारा ये जीवन उनके चरणों में अर्पित हो, हर पल हर क्षण हमारा चिंतन उनके नजदीक जाने की दिशा में हो, इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय साईं राम।